ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यामनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सह गण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सह गण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमाओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भीष्म पंचक के इस अवसर पर आज तीसरे दिवस की कथा है भीष्म स्तुति, अर्थात भीष्म देव के द्वारा श्री कृष्ण को अर्पण की गई स्तुतियों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब तक चर्चा कर चुके हैं कि कैसे भीष्म देव जो बाणों की शैया पर हैं इस समय, तो बाणों की शैया पर रहते हुए उन्होंने उपदेश दे दिए युधिष्ठिर महाराज को, और फिर सारे ऋणों से मुक्त होकर, या कहना चाहिए कि अंतिम सेवा भी कर ली जाने से पहले, शरीर को त्यागने से पहले इस शरीर में, और फिर अब अपना पूर्ण ध्यान उन्होंने श्री कृष्ण पर लगा लिया। और श्री कृष्ण को बहुत सुंदर अन्य सारे अपनी इंद्रियों के कार्य बंद करके पूर्ण रूप से केवल कृष्ण को स्मरण करते हुए अब उन्होंने सुंदर प्रार्थनाएं अर्पण करनी प्रारंभ की। कल हम लोगों ने सुना उनकी पहली प्रार्थना, इति मतिर उपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वताम विभूमि सात्वताम पुंगवे विभूमि। तो उनमें चर्चा हमने की कि कैसे प्रमुखतः भीष्म देव समझा रहे हैं कि हमें अगर कृष्ण को प्राप्त करना है तो स्वाभाविकता हमें कृष्ण प्राप्त करने के लिए तृष्णा को छोड़ना होगा। तो इसकी चर्चा हम लोगों ने कल की। तृष्णा का अर्थ होता है भौतिक इच्छा या किसी चीज को पाने की बहुत बहुत तीव्रता। तो ये क्यों नहीं आनंद देती है, ऐसे कहा जाता है, लोग सोचते हैं कि अगर हमें ये चीज मिल जाएगी, मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी, तो फिर मुझे आनंद मिल जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मन है वो हमेशा ऐसी इच्छाएं जो कभी समाप्त नहीं होती उसमें फंसा रहता है। ऐसी बहुत सारी इच्छाएं अभी भी हमारे मन में हैं और जब तक हम इस जगत में हैं ऐसे ही रहेंगी और वो पूर्ण नहीं होंगी। तो इसलिए मन में क्या होता है कि मन में ऐसा लगता है कि एक इच्छा हुई अब दूसरी अब तीसरी, तो कभी भी ये तृष्णा समाप्त नहीं हो सकती। तो क्या भक्ति में आकर भी तृष्णा समाप्त नहीं होती? अब हम लोग ऐसी स्थिति में हैं जहां हम लोग कृष्ण भावनामृत में प्रवेश कर चुके हैं और हमने देखा है कि कृष्ण कृष्ण की भक्ति में कितना आनंद है, तो फिर ये अभी भी तृष्णा क्यों है? तो हमने एक तरफ देख लिया कि आनंद है, लेकिन अब हम उस आनंद के सागर की गहराई में नहीं जाना चाहते क्योंकि अभी तक हमने भौतिक चीजों को छोड़ा नहीं। माया अभी भी हमारे लिए बहुत आकर्षक है। माया हमें एक क्षणिक सुख देती है और उससे क्या होता है, हम कृष्ण को भूल जाते हैं। तो ये तृष्णा है, किसी भी भौतिक चीज के लिए तृष्णा, जहां हम जहां कृष्ण नहीं है, कृष्ण को भूल जाना। तो उद्देश्य क्या होना चाहिए? इस तृष्णा को आध्यात्मिक तृष्णा बनाना है। जैसे भीष्म देव बना रहे हैं, इति उपकल्पिता वितृष्णा, वो बाकी चीजों को छोड़कर कृष्ण में पूरा अपना ध्यान लगा रहे हैं। तो ये तृष्णा को हमें आध्यात्मिक तृष्णा बनाना है, मतलब कृष्ण के लिए इच्छा करना है। इस जगत में हर जीव एक ही चीज चाहता है और वो है सुख। इस सुख की खोज करता रहता है, किसमें? भौतिक चीजों में, अशाश्वत चीजों में, क्षणिक चीजों में खोजता रहता है। जैसे कभी कभी हमें लगता है ये कपड़ा बहुत अच्छा है, इसको मैं खरीद लूंगा, पहनूंगा, बहुत अच्छा होगा, मुझे आनंद मिलेगा। लेकिन कभी सोचा है कि आप उसे खरीद लेते हो, उसे रखते हो और फिर थोड़े समय बाद उसकी ओर इतना आकर्षण नहीं रहता, अब कोई और चीज चाहिए। ये तृष्णा है, मृग तृष्णा, कि हम इधर इधर अन्य चीजों के प्रति भागते रहें। तो उसको हमें बंद करना चाहिए और बंद करने के लिए क्या करना चाहिए? समझना चाहिए कि हम कृष्ण के अंश हैं। हम केवल अंश नहीं है, कई बार हम लोग सोचते हैं हम कृष्ण के अंश हैं, ये हम कृष्ण को ही हम कृष्ण से संबंधित हैं, या फिर कहना चाहिए हम उनकी संपत्ति हैं। हम अंश है नहीं, हम ये नहीं, हम उनकी संपत्ति, लेकिन उनसे अलग हो गए और अलग होकर आनंद ढूंढ रहे हैं। कैसे मिल सकता है आनंद? तो इसलिए हमें ये जानना चाहिए कि भगवान ने हमें स्वतंत्रता दी है, लेकिन उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग अगर हम करते हैं तो फिर हम कभी भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते, भगवान को प्रेम नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें जानना चाहिए कि जैसे कहीं आप बाहर जाते हो, आपको पता है कि घर में आपके माता पिता इंतजार कर रहे हैं, तो इसीलिए ये हमें जानना चाहिए कि हम यहाँ बाहर आ गए हैं, कृष्ण इंतजार कर रहे हैं हमारा, हमें वापस जाना है, यहीं बने नहीं रहना है। ये साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार। तो ये आत्म साक्षात्कार हमें चाहिए। इंतजार कर रहे हैं हमारे पिताजी घर पे, और हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम सोच रहे हैं बड़ा आनंद हो रहा है, मजा ले रहे हैं, वापस जाइए, उनको ज्यादा इंतजार मत कराइए। और कौन जा सकता है? भागवत कहता है निवृत्त तर्षे रूपगीय माना भव औषध श्रोत्र मनोभिरामा कौतम श्लोक गुणानुवादं पुमान विरजेत बिना पशुना। निवृत्त तर्षय, इस तृष्णा को छोड़िए। निवृत्त तर्षय रूपगीय माना भव औषध श्रोत्र मनोभिरामा, भगवान की कथाओं में आनंद लीजिए। का उत्तम श्लोक गुणानुवादा, ऐसा कौन व्यक्ति है जो भगवान की कथाओं में आनंद नहीं लेगा, केवल वही जो पशुनाथ एक, एक कसाई की तरह है या अपने ही आप को मारने वाला व्यक्ति है। इसलिए जब निवृत्त तृष्णा, इस तृष्णा को हम त्याग देते हैं, भौतिक इच्छाओं से दूर हो जाते हैं, तब क्या होता है, तब हमें इस जगत के आकर्षण खींचते नहीं है। जैसे प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, ध्रुव महाराज जब भगवान के सामने आए, भगवान ने कहा मांगो वर, क्या मांगते हो, तो उन्होंने कहा स्वामीन कृतार्थोस्मि वरम न याचे, कि हे स्वामी मैं सब कृतार्थ हो गया हूं, अभी कोई वर नहीं चाहिए मुझे। सो अब भीष्म देव अपनी बुद्धि भगवान को दे रहे हैं। तो प्रश्न आता है कि भगवान को क्यों बुद्धि दे रहे हैं, क्या भगवान को बुद्धि चाहिए हमारी? भीष्म देव अर्पण कर रहे हैं तो क्या चाहिए, भगवान को बुद्धि चाहिए हमारी? नहीं, भगवान किसी बाहरी चीज से प्रसन्न नहीं होते। तो फिर अपने ही आनंद के लिए भीष्म देव दे रहे। जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो इससे भगवान को आनंद नहीं आता है, जीव को आनंद आता है। तो भीष्म देव अपने आनंद के लिए इस बुद्धि को उन्हें दे रहे हैं। तो फिर मन में प्रश्न आएगा कि अरे सारी इच्छाएं छोड़ दी उन्होंने, क्या कोई इच्छा नहीं है, तो फिर ये इच्छा क्यों कर रहे हैं, फिर ये आनंद की इच्छा क्यों कर रहे हैं भीष्म देव, कि भगवान को देखकर आनंद लेना है। ये जान लीजिए कि जीवन की पूर्णता है कि अगर हमें एक अवसर मिल जाए, किस चीज का, एक ऐसी इच्छा को उत्पन्न कर और उसको पोषण करने का, कि जिसके द्वारा हम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा कर सकें। ये परम इच्छा है, ये शुद्ध इच्छा है, और ऐसी इच्छा हम सबको होनी चाहिए, क्योंकि कृष्ण इतने मधुर हैं। अगर तृष्णा, जैसे हम कह रहे थे, तृष्णा को आध्यात्मिक करिए, कृष्ण की ओर मोड़िए। चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर वर्णन किया गया है आदि लीला में कि ये जो तृष्णा है ये कैसी होनी चाहिए। तो वहां बताते हैं, कृष्ण माधुर्य एक स्वाभाविक बल, कृष्ण की मधुरता ये एक स्वाभाविक बल है, आकर्षण है बहुत तेज। तो क्या होता है इससे, कृष्ण आदि नर नारी करो ये चंचल, ये इतना तीव्र आकर्षण है कि ये सभी नर नारियों को चंचल कर देता है, लेकिन साथ साथ कृष्ण को भी, कृष्ण आदि नर नारी करो ये चंचल, उनके मन को आकर्षित कर लेता है, उनके मन को चंचल कर देता है, वो मन सोचने लगता है मुझे चाहिए, मुझे कृष्ण चाहिए। तो कृष्ण माधुर्य एक स्वाभाविक बल, कृष्ण आदि नर नारी करो ये चंचल। और आगे बताते हैं कि क्या होता है, हमें क्या करना चाहिए, अगर मन में इच्छा आ गई है, स्वाभाविक बल आकर्षण हो गया है, श्रवणे दर्शने आकर्षये सर्वमान, आपन आस्वादिते कृष्ण कोरे न जतान। तो बहुत सुंदर कि क्या करें फिर, श्रवणे दर्शने आकर्षये सर्वमन, जब हम श्रवण करते हैं, दर्शन करते हैं भगवान का, तो आकर्षित हो जाता है हमारा मन, आपने आस्वादिते कृष्ण कोरे न जतन, हमें ये प्रयास करना चाहिए। और फिर वर्णन करते हैं तृष्णा का, कि क्या है तृष्णा, ए माधुर्य मृत पान सदा जोई जेई करे, ए माधुर्य मृत पान सदा जेई करे। तो क्या वर्णन है कि इस माधुर्य अमृत का पान, किस माधुर्य अमृत का पान, श्रवण दर्शन, भगवान के श्रवण और दर्शन का, श्रवण कीर्तन का, इमा माधुर्य अमृत पान सदा जय करे, तृष्ण शांति नाही तृष्णा बोढ़े निरंतरे। तो वहां वर्णन किया गया है कि अगर इसका पान निरंतर करते हैं तो क्या होता है, तृष्ण शांति नाही, ये तृष्ण शांत नहीं, ये तृष्ण शांत नहीं होती, तृष्ण बढ़े निरंतरे, जैसे इस भौतिक जगत में हम एक चीज के बाद दूसरी चीज तीसरी चीज के लिए तृष्णा बढ़ाते हैं, तो वही तृष्णा कृष्ण के लिए बढ़ानी है। तृष्ण शांति नाही तृष्णा बढ़े निरंतरे, तो इस तृष्णा को हमें बढ़ाना, ये सच्ची तृष्णा है। और क्या फिर उसको देखकर, भगवान के सुंदर रूप को देखकर, भगवान की कथा सुनकर व्यक्ति तृप्त हो जाता है? नहीं। अतृप्त हैया कोरे विधिर निंदन, बहुत सुंदर बात कही गई, अतृप्त हये कोरे विधिर निंदन, अविदग्ध विधि बल न जाने सृजन। ब्रह्मा जी की निंदा हो रही है, क्या है, अतृप्त हये कोरे विधिर निंदन, तृप्त नहीं हुई है आंखें अभी दर्शन से, भगवान के श्रवण से कान, आंखें हमारी और देखना चाहती हैं भगवान को, लेकिन विधि, इसका निंदा हो रही है, किसकी, ब्रह्मा जी की। अतृप्त है यह कोरे विधिर निंदन, क्यों, अविदग्ध विधि भल न जाने सृजन, ये मूर्ख है ब्रह्मा जी। क्यों मूर्ख है भाई, भलो ना जाने सृजन, इनको सृजन करना आता ही नहीं, सृष्टि करनी आती ही नहीं। अच्छा, ऐसा क्या कर दिया उन्होंने, कोटि नेत्र नाही दिला सबे दिल दुई। ब्रह्मा जी ने क्या गलती कर दी है, ब्रह्मा जी की गलती है कोटि नेत्र नाही दिला, करोड़ों करोड़ों आंखें नहीं दी, कोटि नेत्र नाही दिला सबे दिल दुई, सबको केवल दो आंखें दी है। ताहते निमेश कृष्ण की देखी बबुई, तो वर्णन है कि कोटि नेत्र नाही दिले, करो एक तो करोड़ों करोड़ आंखें नहीं दी, दो ही आंखें दी हैं, ऊपर से उसमें पलके बना दी, फिर से ऐसे बार बार बंद हो जाती हैं हर समय आंखें, तो कृष्ण को कैसे देखें, ये भाव है भक्त का। गोपियां भी गोपी गीत में इसी भाव को प्रकट करती हैं। अटती भवा अहनिकाननम त्रुटि युगायते त्वाम पश्यता कुटिल कुंतलम श्रीमुखम चते जड़ कहती है, अटति यद भवान अहनिकाननम, आपने वन में प्रवेश कर लिया, त्रुटि युगायते त्वाम अपश्यताम, आपको अगर हम नहीं देख पाते हैं, त्वाम अपश्यताम त्रुटि युगायते, त्रुटि मतलब क्षण में, एक क्षण भी हमें एक युग के समान प्रतीत हो रहा है। कुटिल कुंतलम श्री मुखम चते, आपके मुख को नहीं देख पा रही है जड़, अब ब्रह्मा जी की निंदा कर रही है, मूर्ख है वो ब्रह्मा, क्यों, पक्षमकृत दृशाम, हम देखना चाहते हैं और उसने ये पलके बना दी। तो तृष्णा को त्यागना आवश्यक है, तो हमें अगर तृष्णा को त्यागना है तो क्या करना चाहिए, आइए हम सब मिलकर ब्रह्मा जी की निंदा करते हैं कि उन्होंने आंखों में ये पलके बना दी है। जड़ दीक्षता पक्षमकृत दृशाम, लेकिन ब्रह्मा जी की निंदा करें किस लिए, कि हम कृष्ण के दर्शन नहीं कर पा रहे, हमारी तृष्णा कृष्ण को देखने की, कृष्ण के अमृत का स्वाद लेने की तृष्णा, तृष्ण शांति नाही तृष्णा बढ़े निरंतर, तो हम और देखना चाहते हैं। तो ये भीष्म देव हमें समझाते हैं कि हमें हर स्थिति में, बहुत सी स्थितियां आएंगी जीवन में, बड़ी चुनौतियां आएंगी जीवन में, जैसे पांडवों के आई, भीष्म देव के स्वयं आई, साधारण व्यक्ति के आ सकती, किसी के कार्य चला जाता, जॉब चली जाती है जिससे धन कमा रहे, धन चला जाता है, कोई बहुत बड़ा व्यापारी है वो कंगाल हो जाता है, या बहुत अच्छी स्वास्थ्य है उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, तो तो ये सब चीजें हमें बहुत विचलित कर देती है। जैसे एक बच्चा होता है, मान लीजिए बच्चा कुछ खा रहा है, उसको एक बहुत चीज पे चॉकलेट खा रहा है, उसको चॉकलेट पसंद, उसके हाथ से छीन लीजिए चॉकलेट, क्या होगा बच्चे का? एकदम एकदम वो बहुत अच्छे से आनंद ले रहा है, एकदम डिस्टर्ब होगा, रोने लगता, चिल्लाने लगता है, भागता है आपकी तरफ। और यही हम सब करते हैं, कुछ चीज हमारे हो जाती है जीवन में, हम भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें उनको कृष्णा को त्याग कर कृष्ण की ओर जाना, क्यों? ताकि ऐसी अवस्था में भी हमें कोई चिंता ना, हम हमारा मन कृष्ण में लगा रहे, हम ये जान लें तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजाने वात्मकृतम विपाकम, जो कुछ है आपकी कृपा। तो इस बात को भीष्मदेव कहते हैं। और अब आगे भीष्मदेव ये समझाते हैं कि जब हमारी तृष्णा समाप्त हो जाती है तब हम भगवान के सुंदर रूप को निहार सकते हैं, या कहना चाहिए कि तब हम भगवान की सुंदरता को समझ सकते हैं या देख सकते हैं, या कहना चाहिए कि उसको उसका गुणगान कर सकते हैं। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवरांबरम दधाने वपुर लकुकुलावृतानाब्जम विजय सखेरतिस्तुमेन वद्या। तो यहां भीष्मदेव कह रहे हैं त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, हे कृष्ण, तीनों त्रिभुवन में आपका जो रूप है वो सबसे ज्यादा, कमनम त्रिभुवन कमनम मतलब सभी कामना कर रहे हैं आपके इस रूप की, किस रूप की? तमाल वर्णम, तमाल वृक्ष की तरह आपका वर्ण है। रविकर गौर वरम वरम दधाने, सूर्य की जो किरणें हैं वो गौर, गौर यानी आप स्वर्ण रंग के जो वरम वरम आपने दधाने पहने हुए हैं, जो कपड़े पहने हुए हैं, अर्थात पीताम्बर जिस पर सूर्य की किरण पड़ रही है तो चमक रहा है बिजली की तरह, तो ऐसा आपका सुंदर शरीर लग रहा है। वपु अलक कुल आवृत, तो आपका जो वपु शरीर है वो क्या है? चंदन से, ऐसे मानो कि चंदन से पूरा ढका हुआ है। और चेहरा कैसा है आपका, मुख कैसा? आनन आबजम, ये कमल के समान है। और फिर विजय सखे मतलब आप अर्जुन के मित्र हैं, ये याद कर रहे हैं। और मेरी रति, रति अस्तु, मेरा जो आकर्षण है बस उन्हीं में लगे, और कैसा लगे? निरंतर, कोई और इच्छा ना। तो यहां भीष्मदेव समझाते हैं कि जब हम तृष्णा को त्यागते हैं तो फिर हम बड़ी आसानी से कृष्ण की सुंदरता को समझ सकते हैं, या कृष्ण की सुंदरता के प्रति आकर्षित हो सकते हैं। जब श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर आते हैं तो वो आत्म माया, भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि वो कैसे आते हैं? योग माया से, अपनी अंतरंग शक्ति से प्रकट होते हैं, बाध्य होकर नहीं, कर्मों के द्वारा नहीं, कोई बाध्य नहीं कर सकता श्री कृष्ण को प्रकट होने के लिए। और इसीलिए उनका जो शरीर होता है वो दिव्य होता है, उनका उनके भौतिक चीजों से कुछ लेना देना नहीं है। जैसे हमारा शरीर है ये भौतिक तत्वों से बना है, लेकिन कृष्ण का नहीं। तो जिस समय युद्ध हो रहा था तो भीष्म देव का आकर्षण श्री कृष्ण की तरफ था उनके कपड़ों की तरफ था, कि कैसे लग रहे हैं, कैसे चमक रहे हैं। तो यहाँ इस श्लोक में भीष्म देव उस बात को कह रहे हैं, क्योंकि भगवान का, समझिए, भगवान के मुख पर अगर पसीना आ जाता है तो भगवान भगवद गीता में कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम, तो जो भी है वो दिव्य है, पसीना भी दिव्य आता है, और इसीलिए सुंदरता बढ़ा देता है। त्रिभुवन में लोग कृष्ण के प्रति बहुत आकर्षित है। तो भीष्म देव युद्ध के समय उनको देख रहे हैं। दरअसल पूरे युद्ध में जो सेना थी वो जब भी युद्ध करते थे तो कृष्ण की ओर नहीं देखते थे क्यों नहीं देखते थे? क्योंकि अगर कृष्ण की ओर देखेंगे तो भूल जाते थे युद्ध करना, क्या कर रहे हैं वो सब भूल जाते थे उनके सुंदर रूप को देखकर। कैसा सुंदर रूप है उनका, देवता भी नित्यं दर्शन कांक्षिणः। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि इस मेरे रूप को देवता भी नित्य देखना चाहते हैं, वो सुनना चाहते हैं भगवान की आवाज कहां से आ रही क्या है। और वही आवाज घोड़ों को आदेश दे रही है, ये भीष्म देव देख रहे हैं। तो भीष्म देव वर्णन कर रहे हैं उस रूप का, क्या बहुत सुंदर लग रहे थे। दूसरे शब्दों में कहना चाहिए कि या तो वो अर्जुन का गुणगान कर रहे हैं या फिर थोड़ा सा द्वेष कर रहे हैं अर्जुन से, कह रहे तुम्हारे सखा हैं वो। लेकिन वो जानते हैं कि अर्जुन सदैव विजयी होता है, इसलिए विजय सखे मतलब वो व्यक्ति जो हमेशा विजयी होता है। क्यों? क्योंकि आप उसके सखा हैं, आप उसके मित्र हैं। तो एक बहुत अच्छे योद्धा की तरह भगवान से युद्ध कर रहे हैं। अब भीष्म देव का भगवान से युद्ध करना क्या सही था? भगवान को ये अर्पण कर रहे हैं, अपनी अपने तीरों को ये अर्पण कर रहे हैं। जैसे भीष्म देव हर रात्रि को अपने तीरों को बहुत अच्छे से शार्प किया करते थे, उसको बहुत अच्छी तरह से घिस घिस कर शार्प करते थे। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि कल हो सकता है अर्जुन सामने आ जाए और मैं कृष्ण के ऊपर तीर चलाऊंगा। तो कृष्ण के ऊपर क्यों तीर चलाना चाहते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि कृष्ण उनके स्वामी हैं और कृष्ण से सेवा के रूप में स्वीकार करेंगे। ऐसा संबंध है भीष्म देव और भगवान के बीच, कोई साधारण संबंध नहीं है। तो भगवान और जीव का शाश्वत संबंध है, लेकिन ये संबंध धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे हम उस संबंध की पूर्णता तक पहुंचते हैं। हमें कोई नकल नहीं कर लेनी चाहिए, कोई बहुत सस्ते तरीके सस्ते मार्ग नहीं अपना लेने चाहिए हमें कि बस आज मुझे अपना रूप प्राप्त हो गया। नहीं, धीरे धीरे भगवान सबसे पहले निवृत्त तृष्णा को त्यागें और फिर भगवान की सुंदरता को हम समझने का प्रयास करें। और जब उस सुंदरता को वो देख रहे हैं भीष्म देव, तो अब वो एक बहुत सुंदर उपदेश अपनी अगली प्रार्थना में देते हैं, उसी दृश्य को याद करते हुए। कहना चाहिए कि जो आनंद उन्हें श्री कृष्ण को देखने का उस युद्ध में आया, वो कभी नहीं आया जीवन में। सतत उन्हें देखना कि कैसे हैं कृष्ण, और अब आगे वो उनका वर्णन कर रहे हैं। युधिर्गर्जो विधूम्र विश्वत् कचलुलित श्रमवार्य लंक कृतास्य मम निशीत शरैर विभीद्यमान त्वची विलसत कवचेस्तु कृष्णात्मा। तो वो कहते हैं युद्ध के दृश्य को देख रहे हैं कि युद्ध क्षेत्र में जहां आप अर्जुन के साथ हैं, अर्जुन अपने मित्र के साथ हैं, तो क्या देख रहे हैं? वहां आपके जो बाल हैं वो ऐसे हवा में उड़ रहे थे। देखिए, भीष्म देव युद्ध कर रहे थे लेकिन क्या देख रहे थे, उनका ध्यान कहाँ था? तो देख रहे हैं कि आपके बाल ऐसे हवा में उड़ रहे हैं, और ऐसे ही वो जो बाल हवा में उड़ते हैं और नीचे से जो धूल है वो आपके बालों पर लग रही है। श्री कृष्ण ने केवल ब्रज की रज नहीं लगाई, उन्होंने कुरुक्षेत्र की रज भी अपने बालों में अपने सर पर लगाई, और इसको देख रहे हैं भीष्म देव कि आपके बाल हवा में उड़ रहे हैं और नीचे से जो रज है वो आपके बालों में आ गई है। ये रज कैसे उड़ रही है? घोड़े दौड़ रहे हैं, तो घोड़े दौड़ रहे हैं तो उनके जो पैर है उससे सारी वो धूल उड़ रही है और वो आपके बालों में आ रही है। और साथ ही साथ आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं घोड़ों को चलाने में, घोड़ों को पकड़ने में, और इसके कारण पसीना आ गया, पसीने की बूंदें आपके चेहरे पर आई हैं और ये बहुत सुंदर लग रही है। आपका चेहरा और आपका जो मुख है वो और उसकी सुंदरता बढ़ गई। ये जो छोटी छोटी बूंदें मोती की तरह आपके मुख पर है, और फिर इन सबको सुंदरता प्रदान की, आप लोग सुंदर है ही, और सुंदरता हो गई जब मैंने तीर चलाया। भीष्मदेव कहते हैं मैंने बड़े तीव्रता से तीर चलाया और वो आपके शरीर पर लगा और उससे घाव हो गया और सुंदरता बढ़ गई आपकी। अब बड़ी आश्चर्य की बात है ना इस चीज को समझना। अरे किसी को आप चोट पहुंचा रहे हो, उसको घाव लग रहा है और आप कह रहे हो सुंदरता बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि वो कहते हैं कि आप उसको स्वीकार कर रहे थे, मेरी ये सेवा के रूप में आप उसको स्वीकार कर रहे थे। तो यहां बहुत सुंदर बात भीष्मदेव हमें समझा रहे हैं। पहले उन्होंने समझाया मत भौतिक तृष्णा, इसको त्याग दो। फिर उन्होंने समझाया तब श्री कृष्ण की सुंदरता के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। और तीसरी चीज वो बता रहे हैं कि जब श्री कृष्ण की सुंदरता, श्री कृष्ण के श्रवण कीर्तन में हमारा ध्यान बढ़ेगा, तब क्या होगा, हम ये समझ पाएंगे कि कैसे कृष्ण अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है हमें समझना। जैसे यहां ये कह रहे हैं कि युद्ध में बहुत आनंद आ रहा है भीष्म को, क्यों देख रहे हैं आप घोड़े चला रहे हो, मेहनत कर रहे हो, धूल उड़ रही है, आपके बालों में लग रही है, सारे बालों में नहीं, आप पूरे माथे पर धूल लग गई है, पसीने की बूंदें आ रही हैं, तो ये सब वो देख रहे हैं। आपके बाल ऐसे ऐसे, आप चल रहे से बाल इधर उधर घूम रहे हैं, मानो भीष्मदेव कह रहे हो कि अगर मैं 1000 जन्म भी ले लूं तो भी ये सुंदरता है इसको निहारने में मेरा समय कम होगा। 1000 जन्मों में भी मुझे यही यही चित्र मेरे सामने रहे, यही रूप मेरे सामने रहे और मैं आपके रूप को निहारता रहा। जब भी भीष्मदेव को पता होता था कि अगले दिन अर्जुन के साथ युद्ध होना है तो भीष्मदेव बड़ी तेज कर लेते थे कि मारेंगे भीष्म अर्जुन को तो मारेंगे ही, साथ साथ कृष्ण को भी मार लेंगे। तो कैसे एक जो सच्चा भक्त होता है वो भगवान को फूल अर्पण करता है, जब प्रार्थना इत्यादि कर रहा है तो भगवान को फूल अर्पण कर रहा है। भीष्मदेव क्या है, एक क्षत्रिय है, युद्ध में है और इसीलिए भगवान को क्या अर्पण कर रहे हैं, तीर अर्पण कर रहे हैं। और ये जो तीर, जैसे यहां वो कह रहे हैं मम अनिष्ट शरह, तो मैंने जो तीर बहुत अच्छी तरह से तेज किए थे तो वो कहते हैं कि ये मैं आपको हर हर तीर आपको अर्पण कर रहा हूं, ये मेरी अर्चना है। जैसे कभी कभी तुलसी के दल अर्पण किए जाते हैं, एक दल अर्पण करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, विष्णु ओम गोविंदाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ऐसे ही भीष्मदेव कर रहे हैं, एक एक तीर छोड़ रहे हैं, ओम गोविंदाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम मधुसूदनाय नमः। तो ये उनकी अर्चना है, एक क्षत्रिय के रूप में युद्ध स्थल में भगवान की पूजा कर रहे हैं। क्या दिखला रहे हैं कि हम भगवान की पूजा कहीं भी किसी भी अवस्था में कर सकते हैं अगर हृदय में प्रेम है। और भगवान ने कैसे लिया उन 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 तीरों को अपने भक्त की एक ऑफरिंग, भक्त ने एक अर्पण कुछ किया है उसको स्वीकार किया बड़ी प्रसन्नता से। भगवान को जब तीर लग रहे थे तो कवच भी एक समय टूट गया भगवान का, उन्होंने कवच पहना हुआ था और कवच टूट गया, भीष्म ने देखा उसको, लेकिन फिर भी बड़े प्रेम से भगवान ने उन तीरों को स्वीकार किया। कैसे कि मेरा भक्त मुझे अर्पण कर रहा है। तो हर तीर ये एक अर्चना था भीष्म देव के लिए, अर्चन कर रहे थे। तो ये भगवान कैसे अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं ये हमें समझना चाहिए। जब भगवान आते हैं इस जगत में उन अवतार लेते हैं तो ऐसा लगता है कि वो हमारे जैसे ही एक है, भौतिक जीवन में बद्ध व्यक्ति है। लेकिन क्यों आते हैं ऐसे? ये असुरों को भ्रमित करने के लिए, जो जिनको विश्वास नहीं है उन लोगों को भ्रमित करने के लिए, क्योंकि वो हमेशा भगवान को मारने के लिए प्रेरित होते हैं। जैसे कंस इंतजार कर रहा था कब कृष्ण आएंगे, कब कृष्ण आएंगे, मैं कृष्ण को मार दूंगा, और भगवान तो आकर पहले ही चले, तो धोखा दे देते हैं ऐसे लोगों को। तो भीष्मदेव भगवान के इस भाव को कि भगवान बहुत कृपालु हैं, उसको यहां प्रकट कर रहे हैं कि भगवान ने अर्जुन को अकेले नहीं छोड़ा। विजय सखे, ऐसा नहीं कि जब तीर लग रहे हैं भीष्म देव के तो भगवान छोड़कर चले गए, अर्जुन अरे छोड़ो तुम क्या कर रहे हो, देखो तीर मुझे लग रहे हैं, और ना ही उन्होंने कभी ये सोचा कि अभी भीष्म इसने मुझे बहुत तीर मारे थे, अब ये बाणों की शैया पर है, मैं नहीं जाऊंगा इनके सामने। तो भीष्म देव इस बात को याद कर रहे हैं कि हालांकि बाहरी दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से युद्ध स्थल में मैंने आप पर तीर चलाए, कहना चाहिए आपका विरोध किया, आपको मारने का प्रयास किया, लेकिन आप अभी भी इस समय भी मेरे सामने आए हैं मुझ पर कृपा करने के लिए। तो यहां दो चीजों को हम बहुत महत्वपूर्ण देखते हैं, एक भीष्म का पश्चाताप और दूसरा भगवान का स्वभाव। ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। जब हम जीवन में, भक्ति के जीवन में होते हैं, तो जैसे यहां भीष्म देव उस बात को याद कर रहे हैं, तीर चला रहा था आपका, लेकिन आप देखिए कितने कृपालु हैं। हमें अपने कार्यों पर, अपने जीवन में पीछे देखना चाहिए, क्या किया हमने भक्ति में, और थोड़ा पश्चाताप होना चाहिए। कहना चाहिए कि हर दिन व्यक्ति को पश्चाताप करना चाहिए कि आज का दिन मैं पूर्ण रूप से कृष्ण की सेवा नहीं कर पाया, प्रयास किया हो नहीं पाया, कल फिर से करूंगा। कृष्ण बहुत कृपालु हैं। जैसे ये प्रसंग हमें बारंबार याद रखना चाहिए, अगर कृष्ण की कृपा को याद रखना है। ऐसे बहुत से प्रसंग हैं भागवत में, पुराणों में, जिनको हम याद करके कृष्ण की कृपा को याद कर सकते हैं। अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघम सया पायदप्य साधवी लेभे गतिम धात्रुचितम तदुन्य दयालु शरणम ब्रजेम। अहो बकीयम स्तन काल कूटम, उतना अपने स्तनों पर बहुत बहुत तीव्र जहर लगाकर आई है मारने के लिए आपको, लेकिन आप अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघाम सयापाय अदप साधवी, असाधवी है वो, राक्षसी है वो, लेकिन आपने उसे धात्री का स्थान दे दिया अपने धाम में। कम वा दयालु शरणम ब्रजेम, कौन होगा जो आपकी शरण नहीं आएगा। और ये यहां पर हमें याद करना चाहिए कि भीष्म देव, हे कृष्ण, भीष्म ने आप पर तीर चलाए, मारा आपको, आपको आपको लहूलुहान कर दिया, घाव भर गए आपके शरीर पर, लेकिन फिर भी आपकी कृपा। अब जिस समय सबसे अधिक आवश्यकता है भीष्म को आपके दर्शन की, आप उनके सामने खड़े, तो भगवान की कृपा और हमारा पश्चाताप बहुत आवश्यक है। जब हम पश्चाताप करते हैं कि हे कृष्ण मैंने क्या किया, तो हर हर दिन ये पश्चाताप हमें होना चाहिए अगर हम कृष्ण की सेवा नहीं कर पाए। जीवन व्यर्थ है, मानुष जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनो। तो हमारा जीवन क्या होगा, मानुष जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया, पश्चाताप, जानिए सुनिए विष खाइए। तो इसीलिए भक्ति के जीवन में जब हम आ गए हैं, हमें अपना पूर्व जीवन देखना चाहिए, कितने वर्ष मैंने व्यर्थ कर दिए, सेवा नहीं कर पाया, अब मैं पूरी तरह से करूंगा। और हर रोज रात को सोने से पहले थोड़ा सा स्मरण कर लीजिए, क्या आज के दिन में ऐसा कोई क्षण रहा, ऐसा कोई समय रहा, ऐसा कोई मिनट, ऐसा कोई आवर, ऐसा कोई समय जहां मैं कृष्ण की सेवा नहीं कर पाया। अगर हाँ तो पश्चाताप कीजिए और प्रण कीजिए कि कल ऐसा नहीं होगा, प्रयास करूंगा। तो कभी कभी लोग कहते हैं कि भगवान का भी तो शरीर साधारण है, देखो भीष्म ने तीर मारे, घाव लगा, खून निकलने हैं, भीष्म खुद कह रहे हैं खून निकल रहा है, पसीना आ रहा है, तो ये सब तो साधारण व्यक्ति के लक्षण है। प्रभुपाद बहुत अच्छी तरह इसको समझाते हैं। प्रभुपाद कहते हैं ये जो दिखने में ये जो घाव हैं, ये तीरों के द्वारा जो घाव हो गए हैं, ये किस लिए हैं? साधारण व्यक्ति को भ्रमित करने के लिए है। लेकिन जिसको थोड़ा सा भी ज्ञान है भक्ति का, वो समझ सकता है कि ये दिव्य आदान प्रदान है भक्त और भगवान के बीच। किसमें? वीर रस में। भगवान अलग अलग रसों में जीव के साथ संबंध रखते हैं, और फिर कई ऐसे रस हैं जो आते जाते हैं, संचारी रस कहते हैं जिन्हें, जैसे वीर रस, रौद्र रस, ये सारे विभत्स रस, भयानक रस, ये सारे संचारी, संचारी मतलब आते जाते हैं, स्थाई रस नहीं। स्थाई रस तो केवल पांच है, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। और इन पांच रसों में ही जीव का भगवान के साथ संबंध होता है, और बाकी तो आते जाते आनंद बढ़ाने के लिए। जैसे भीष्मदेव ये दास्य रस के भक्त हैं, लेकिन वीर रस का आस्वादन दे रहे हैं श्री कृष्ण को। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज हमारे लिए समझने के लिए है इस श्लोक में, कि जहां भगवान को अगर प्रेम से कुछ भी अर्पण किया जाए, भगवान प्रसन्नता से स्वीकार करते हैं। दूसरी चीज, किसी भी अवस्था में, किसी भी स्थान पर, युद्ध स्थल ही क्यों ना हो, आप भगवान की भक्ति कर सकते हैं। ये यहां हम लोग इस श्लोक से समझते हैं। और अब आगे एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत अगली प्रार्थना में भीष्म देव प्रकट करने वाले हैं। अभी वो उसी युद्ध स्थल को ही देख रहे हैं और उसमें ही भगवान ने कैसे, कृष्ण ने कैसे अर्जुन के साथ क्या क्या किया, अन्यों के साथ, उसी को देख रहे हैं। और अब वो एक भक्ति का बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत अपनी अगली प्रार्थना में प्रकट करने वाले हैं। तो इस प्रार्थना को हम लोग कल सुनेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।